नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आज फिर आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रोताओं, हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का संबंध पूर्वोत्तर राज्य से खासा रहा है, वो इस तरह से क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक राज्य असम से वे लंबे समय तक राज्यसभा के लिए चुने गए और पहली बार 1991 में भारत के वित्त मंत्री बनते हुए उन्हें असम से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। पूर्वोत्तर डायरी की टीम की तरफ से उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए आता है हर रविवार शाम 5:30 बजे, जिसमें हम 8 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से अनेक खबरें लाते हैं, वहां की गतिविधियां आपके साथ साझा करते हैं, संस्कृति, परंपरा, शिल्पकला की बातें आपके साथ करते हैं और ये एक पूरा कार्यक्रम आपको सैर करवाता है पूर्वोत्तर राज्यों के अलग अलग आयामों की। और जहां एक तरफ समृद्ध संस्कृति की हम बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम विविधता और कला की भी बात करते हैं। तो इन राज्यों की इसी सैर पर आज हम फिर से आपको लिए चलते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में बहुत कुछ आपके लिए खास है। श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी के कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको लिए चलेंगे एक खास पेशकश में। आज की इस खास प्रस्तुति में हम जानेंगे कि बीते इस 2024 के साल में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए क्या कुछ हुआ है, इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने जो भूमिका निभाई है, जो नई परियोजनाएं संचालित की हैं और संस्कृति और कला के उत्थान को लेकर और पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जो काम किए हैं, उन पर हम विस्तार से अपने इस वर्षांत रिपोर्ट में जानेंगे। श्रोताओं, बीते दिनों क्रिसमस का त्योहार पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, तो आज अलग अलग राज्यों से हम ये भी जानेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में किस तरह से क्रिसमस का यह त्योहार रहा, क्या भव्यता रही, क्या सजावट रही और खासतौर पर जो पर्यटक इन दिनों पूर्वोत्तर राज्यों में घूमने के लिए आते हैं, उनका कैसा अनुभव रहा। अंत में हम कार्यक्रम में आपसे बात करेंगे बाल विवाह की। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन इसमें असम ने अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाई है। असम पुलिस प्रशासन ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई कार्रवाइयां की हैं और इन दिनों तीसरा एक सबसे बड़ा अभियान चल रहा है असम में बाल विवाह को रोकने के लिए। तो अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से हम सीधे जुड़ेंगे और वहां से जानकारी लेंगे कि ये अभियान किस तरह से सफल हो रहा है और कितने मामले अब तक बाल विवाह को लेकर दर्ज किए गए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी ये खास वर्षांत रिपोर्ट सुनते हैं।
नमस्कार। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में हुई प्रगति पर केंद्रित इस विशेष वार्षिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जिसे लेकर मैं उपस्थित हूं करिश्मा राय। 2024 का ये साल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास के नजरिए से अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष के दौरान बुनियादी ढांचे, निवेश और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। आइए मुख्य बातों पर विस्तार से चर्चा करें। मंत्रालय ने वर्ष की शुरुआत बड़ी संख्या में परियोजनाओं को मंजूरी देकर की। ये परियोजनाएं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, जिनमें उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल शामिल है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का ये फोकस रहा है कि परियोजनाओं को मंजूरी देने और उनके लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया जाए, इसलिए इससे जुड़ी प्रक्रिया पर काफी काम हुआ। 2024 में मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के तहत 1,970 करोड़ रुपए की 86 परियोजनाओं को मंजूरी दी और लगभग 1,600 करोड़ रुपए जारी किए, जिनमें पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना, प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल NEC की योजनाएं और विशेष विकास पैकेज शामिल हैं। मंत्रालय ने PM डिवाइन और NESIDS जैसी योजनाओं के नियमों को सरल बनाया है, जिसका अर्थ है कि कम कागजी कार्रवाई हो और योजनाओं का तेजी से अनुमोदन हो सके। इसके लिए पूंजी जारी करने के तरीकों को भी सुव्यवस्थित किया गया है, जो अब केवल 4 किश्तों में होता है, जिससे देरी कम होती है। प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए मंत्रालय ने अलग अलग परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पूर्वोत्तर विकास सेतु का मंच शुरू किया है। इसके अलावा योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए PM गति शक्ति पोर्टल जैसे ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के विकास के लिए दूसरे मंत्रालयों और विभागों के साथ भी काफी काम हुआ है। अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय अपने बजट का कम से कम 10% उत्तर पूर्व में खर्च करें। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इस पर सक्रिय रूप से निगरानी रख रहा है। बजट के इस प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ नियमित बैठकें आयोजित हुई हैं। 10% के इस अनिवार्य खर्च को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। जमीनी स्तर पर जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए केंद्रीय मंत्री नियमित रूप से उत्तर पूर्व का दौरा कर रहे हैं। लगभग हर 2 सप्ताह में एक केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों में किसी एक का दौरा करते हैं। 2015 से पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल के माध्यम से 723 से अधिक ऐसे दौरे हुए हैं। मंत्रालय ने विकास के कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष कार्य बल भी स्थापित किया है। एक कार्यबल इस क्षेत्र के एक मूल्यवान संसाधन अगर वुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। एक अन्य हर राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों को विकसित करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पूरे वर्ष के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कई प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया। पूर्वोत्तर सम्मेलन 5 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्री ने द्वारका में 116 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी। इसके साथ ही जेएनयू नई दिल्ली में 28 करोड़ रुपए की लागत से बने बराक छात्रावास का भी उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित इस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित किया। पारंपरिक कला शिल्प और संस्कृति के साथ साथ असम के लक्सा और मणिपुर के एरोम्बा जैसे पूर्वोत्तर भारत के विशिष्ट व्यंजनों का भी प्रदर्शन किया गया। CSR गोलमेज सम्मेलन 15 फरवरी को आयोजित किया गया था। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित इस गोलमेज सम्मेलन में उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय के सचिव, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों, CPSE के प्रतिनिधि, विभिन्न कॉरपोरेट्स और गैर सरकारी संगठन ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूंजी को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श करना था। यहाँ हम एक और खास आयोजन की चर्चा कर रहे हैं, भारतीय कला महोत्सव जो 29 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। हैदराबाद में आयोजित इस 8 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें कला शिल्प संगीत नृत्य और व्यंजन शामिल थे। 300 से अधिक कलाकारों और शिल्पकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर विकास चिंतन शिविर इस साल का एक और विशेष आयोजन रहा जो 13 सितंबर को आयोजित हुआ था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में 54 केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, सीमा सड़क संगठन, पूर्वोत्तर के 14 आकांक्षी जिलों के उपायुक्तों, 8 पूर्वोत्तर राज्यों के योजना सचिवों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस शिविर का उद्देश्य परियोजनाओं के समय पर लागू करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 19 और 22 सितंबर को आयोजित हुआ था। भारत मंडपम में आयोजित इस महोत्सव में कई देशों, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 18 केंद्रीय मंत्रालयों और इससे जुड़े सरकारी निकायों ने भाग लिया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने CPSE नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाई। मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के लिए सतत कृषि पर एक सत्र का आयोजन किया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो 6 से 8 दिसंबर तक इसी महीने आयोजित हुआ था, ये एक आकर्षक महोत्सव था। भारत मंडपम में आयोजित इस पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की जीवंत संस्कृति, वस्त्र और शिल्प कला, पर्यटन अवसरों, पारंपरिक शिल्प कौशल और GI टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। असम, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रियों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने उद्घाटन समारोह और तकनीकी सत्रों में भाग लिया। यह महोत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव था और साथ ही भारत के भविष्य के विकास में इसके महत्व को भी देखा गया। इस कार्यक्रम में पूर्वी नामक एक शुंभकर का अनावरण किया गया। ये एक पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती महिला की छवि पर बनाया गया है, जो क्षेत्र की विरासत, संस्कृति और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। 250 से अधिक कारीगरों ने हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिनमें 34 GI टैग वाले उत्पाद शामिल थे। तकनीकी सत्रों में महिला नेतृत्व, IT, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, खेल जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों की खोज पर गहन चर्चा की गई, जबकि क्रेता विक्रेता बैठकों ने व्यवसायिक सहयोग को बढ़ावा दिया। महोत्सव के दौरान आयोजित निवेशक गोलमेज सम्मेलन में कुल 2,326 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा के नतीजे प्राप्त हुए। बैंकर्स कॉन्क्लेव पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय समावेशन के लिहाज से एक अहम आयोजन रहा। ये 21 दिसंबर को अगरतला त्रिपुरा में आयोजित हुआ। बैंकर्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्देश्य पूर्वोत्तर में वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ाना था। वित्तीय समावेशन, क्रेडिट डिलीवरी, डिजिटल इकोसिस्टम और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण इस कॉन्क्लेव के मुख्य फोकस क्षेत्र थे। इस कॉन्क्लेव में वित्तीय साक्षरता में सुधार, SHGS को बढ़ाना और MSMEs को औपचारिक रूप देने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। यह अपेक्षा जताई जा रही है कि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास के लिए क्रेडिट प्रवाह और एंड टू एंड वित्त पोषण में वृद्धि हो सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए उद्योग क्षेत्र से लगातार मंत्रालय कई स्तरों पर समझौता और साझेदारी स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए इस साल कई निवेश को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों का आयोजन किया गया। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों, हस्तशिल्प और हथकरघा, पर्यटन और आतिथ्य, IT और ITs, खेल और मनोरंजन, शिक्षा और कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई। 2024 के दौरान कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में कुल 4 रोड शो आयोजित किए गए, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की निवेश और व्यापार क्षमता को प्रदर्शित किया जा सके। अब तक सभी 6 रोड शो में राज्य और निवेशकों के बीच 115 MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं बैठक 21 दिसंबर को शिलोंग में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, खास तौर पे बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने और विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि वस्तु ई कनेक्ट ऐप लॉन्च किया गया था। जमीनी स्तर पे परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने विकास के लिए एक 5 सूत्रीय ढांचा भी विकसित किया है, जो हर राज्य की प्रतिस्पर्धा के रुझान को बढ़ाने में सुधार लाएगा। सीमावर्ती गांव के विकास, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को प्राथमिकता देने, प्रमुख पहलों की पूर्ण कवरेज प्राप्त करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने पर ये विकास सूत्रीय मॉडल केंद्रित है। विकास के मुद्दों की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने विचार नामक व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें स्थायी बुनियादी ढांचे से लेकर उद्यमिता तक के विषयों को शामिल किया गया। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम की ओर से भी इस बार कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये संस्था स्थानीय कारीगरों और बुनकरों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है, उन्हें प्रशिक्षण से लेकर बाजार तक पहुंच प्रदान कर रही है और एरी रेशम जैसे बहुमूल्य उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। इस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ये साल महत्वपूर्ण गतिविधियों का साल रहा। एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्माण के लिहाज से ये अहम वर्ष रहा।
तो श्रोताओं, अभी आपने जाना कि इस बीते 2024 में पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ हुआ। अब हम बात करते हैं क्रिसमस के त्योहार की। क्रिसमस का त्योहार आते ही नए साल की भी धूम होती है, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार शुरू होते ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में तो क्रिसमस की हर वर्ष एक बड़ी धूम रहती है, और क्रिसमस के त्योहार से लेकर नए साल तक ये जश्न चलता है। तो इस बार भी पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाया गया, और खास बात ये थी कि पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी संस्कृति और विरासत भी इस त्योहार में मिली, जिससे ये त्योहार बहुत ही अनोखा हो गया। और अब नया साल दस्तक देने जा रहा है, तो ये धूम अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में देखी जा सकती है। खासतौर पर जो पर्यटक थे उनके लिए ये बड़ा रोचक अनुभव रहा, और बहुत सारे पर्यटकों ने पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिसमस के इस उत्सव का आनंद लिया। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्रिसमस का त्योहार किस भव्यता के साथ और किस उत्साह के साथ मनाया गया।
इस बार पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिसमस उत्सव की बहुत धूम रही। पूर्वोत्तर राज्यों से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट से तैयार ये लेखा जोखा हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम इस बार पूर्वोत्तर भारत में क्रिसमस के उत्सव पर बात कर रहे हैं। मिजोरम में क्रिसमस पूरे उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। पूरे राज्य में इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायियों ने चर्च में प्रार्थना सभाओं में भाग लिया और पूरे दिन धार्मिक गतिविधियां चलती रहीं। मिजोरम के लोगों के लिए क्रिसमस का उत्सव साल का एक महत्वपूर्ण पल रहा। दिसंबर का महीना मिजोरम के लोगों के लिए हमेशा उत्सव का महीना होता है। कैलेंडर के आखिरी महीने की शुरुआत के साथ ही लोग दान पुण्य के कार्यों में लगे रहते हैं और समाज के निर्धन और जरूरतमंद लोगों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, चर्च संगठनों और YMA जैसे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अनाथालयों और राहत केंद्रों में दान दिया। क्रिसमस के अवसर पर मिजोरम के लोगों को बधाई देते हुए राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने कहा कि मिजोरम अपने जीवंत क्रिसमस के लिए जाना जाता है, जिसमें धार्मिक भक्ति और पारंपरिक उत्साह का अपना अनूठा मिश्रण है।
मिजोरम इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट क्रिसमस सेलिब्रेशंस with its own unique blend of religious devotion and traditional fervor. The tradition of community bonding during Christmas is noteworthy, and Christmas songs sung in the local languages add a cultural touch to the festivities. The practice of exchanging gifts and greetings reflect the Christmas spirit of generosity, and it is beautiful to see communities reaching out to the less fortunate.
राज्य में दो दिनों तक क्रिसमस मनाया गया, जिसमें राज्य भर के सभी चर्चों ने इस अवसर के महत्व को दर्शाने के लिए दूसरे दिन सामुदायिक भोज का आयोजन किया। नागालैंड में सुंदर पहाड़ियां और शहर उत्सव के रंगों में इस बार फिर से चमक गए, क्योंकि समुदायों और परिवारों ने अपने घरों, चर्चों और सड़कों को क्रिसमस ट्री, जगमगाते सितारों और सजावटी रोशनी से सजाया। नागालैंड में क्रिसमस एक भव्य उत्सव है, जो संगीत, नृत्य, दावत और सामुदायिक भावना से भरा होता है। सभी परिवार और संगी साथी क्रिसमस के मौके पर ईसाई परंपराओं और स्वदेशी नागा संस्कृति के अनूठे मिश्रण को अपनाते हुए आनंदमय दिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए। नागालैंड में क्रिसमस को धार्मिक भक्ति के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने यीशु मसीह के जन्म का स्मरण किया। कई चर्चों में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आधी रात की प्रार्थनाएं हुईं। क्रिसमस के दिन पूरे राज्य में मंडली सामुदायिक प्रार्थना के लिए चर्चों में उमड़ पड़ी। अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे और भजन और आनंदमय कैरोल गाए। परिवार और समुदाय भरपूर दावतों और उत्सवों में भाग लेने के लिए एक साथ आए। चटकती आग की गर्मी के चारों ओर इकट्ठा होकर उन्होंने उपहारों का आदान प्रदान किया और आनंदमय गीतों और मनोरंजन का भरपूर आनंद लिया। स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन तैयार किए गए। नागालैंड में क्रिसमस वास्तव में खुशी, सामुदायिक मेलजोल और समृद्ध सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक अहम त्योहार है। क्रिसमस के उत्सव के साथ नागालैंड नए साल में कदम रखने से कुछ ही दिन दूर नई शुरुआत की ओर देख रहा है। नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए राज्य में कई आयोजन होंगे। विशेष धन्यवाद प्रार्थना सभाओं, मनोरंजन कार्यक्रमों और आतिशबाजी के शानदार प्रदर्शनों से राज्य को रोशन किया जाएगा। मेघालय राज्य ने भी क्रिसमस के त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया। शहर को खूबसूरती से सजाया गया था। सड़कों को रोशन करने वाली क्रिसमस की रोशनी ने एक आकर्षण और उत्सव का माहौल बना दिया था। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में क्रिसमस कार्निवल एक बड़ा आकर्षण बन गया है। कार्निवल जो बीते मंगलवार को समाप्त हुआ, इसमें संगीत प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और उत्सव की गतिविधियों का एक जीवंत मिश्रण था। स्थानीय निवासी और बाहरी पर्यटक बड़ी संख्या में पूरे परिसर को रोशन करने वाली क्रिसमस की रोशनी की सुंदर सजावट को देखने के लिए राज्य केंद्रीय पुस्तकालय में उमड़ रहे थे। शाम के समय कार्निवल में कैरोल समूहों का गायन वातावरण को खुशी और एकता से भर देता है। इनमें से कुछ समूहों का नेतृत्व सांता क्लॉज के रूप में कपड़े पहने लोग कर रहे थे। मेघालय ग्रासरूट्स म्यूजिक प्रोजेक्ट की ओर से आयोजित क्रिसमस कार्निवल ने छुट्टियों के दौरान आगंतुकों को एक अनूठा और आकर्षक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किया है। ये पहली बार है जब राज्य सरकार ने इस क्रिसमस कार्निवल को आयोजित करने की पहल की है। ख्यानदी लैड की ओर जाने वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, जो शहर का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, क्योंकि लोग चकाचौंध रोशनी से जगमगाते और रंगीन सजावट से सजे इस जगह को देखने के लिए उमड़ पड़े। पिछले दो वर्षों में ख्यानदी लैड क्रिसमस की सजावट और उत्सव की रोशनी के साथ सभी की निगाहों का केंद्र बन गया है। इस उत्सव के मौसम में आगंतुकों को सुंदर पहाड़ी राज्य मेघालय में हर जगह देखा जा सकता है, जिसमें मनोरम खासी जयंतिया और गारो हिल्स क्षेत्र शामिल हैं। नए साल की पूर्व संध्या नजदीक आते ही पर्यटकों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। मुंबई के एक पर्यटक रंजीत सिंह ने कहा कि उन्हें ये बहुत पसंद है कि सड़कों को सुंदर सजावट और टिमटिमाती रोशनी से कैसे सजाया गया है। सिंह ने कहा कि उन्होंने शिलांग की रोशनी की सुंदरता के बारे में अपने दोस्तों के साथ साझा किया है। ये कहते हुए कि इस बार वे अकेले आए हैं, उन्होंने कहा कि शायद इस साल वे दोस्तों के समूह के साथ उत्सव के मौसम के दौरान शिलांग घूमने आएंगे। नाजरेत अस्पताल के डॉक्टर रवि सिंह ने सराहना की कि ये पहली बार है जब वे शिलांग में क्रिसमस का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह का क्रिसमस उत्सव तब से देखा है जब उन्होंने विदेश से MBBS किया था। एक स्थानीय निवासी इवा वार्जरी ने कहा कि सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि वे कई लोगों को बाहर आते और आनंद लेते हुए देख सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग शिलांग में क्रिसमस के बारे में बात करते हैं तो वे कुछ जीवंत होने की उम्मीद करते हैं। केरल, दिल्ली और बॉम्बे जैसी जगहों के लोग भी उत्सव के मौसम के दौरान शिलांग घूमने के लिए उत्सुक हैं।
I would say that the government is taking a very nice initiative. I can see many people coming out and enjoying, and truly I've seen the last 2 years the true spirit of Christmas. We can see it on the street, family coming out, celebrating, small children also having fun. And you know, this is how we create memories, and I will say the government is really taking a very good initiative of, and it's going in a very positive way.
शिलांग में क्रिसमस परिवार, दोस्तों और समुदाय का समय है। ये एक उत्सव है जो धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को खुशी और देने की भावना में एक साथ लाता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम में अगली सूचना, अगली खबर की तरफ।
देश भर में बाल विवाह को रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, और इसमें खास तौर पर कानूनी प्रयासों की अगर हम बात करें तो असम में इसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है। असम पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में बाल विवाह के मामलों को लेकर गिरफ्तारियां की हैं, इन मामलों को दर्ज किया है। तो असम पुलिस ने इस बार बाल विवाह के खिलाफ तीसरा बड़ा अभियान शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई और पहले दो बड़े सफल अभियान हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम गुवाहाटी से अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से जुड़ते हैं। मानस, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को इस तीसरे अभियान के बारे में बताएं कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और कितनी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई और मामले दर्ज हुए।
जी कमल, धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि पूरे देश भर में ये बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह के खिलाफ अभियान जारी है, और असम में पिछले डेढ़ दो साल में असम ने काफी इसमें तो एक सक्सेस स्टोरी असम को हम मान के चल सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया, अब ये जो तीसरा अभियान है ये अभी भी जारी है, लेकिन मैं खासकर बताऊंगा कि ये 21 और इसी महीने के 21 और 22 तारीख की बात करूंगा, जब ये अभियान खास करके तीसरे अभियान चलाया गया पूरे प्रदेश भर में। अगर उसकी बात करें तो उसी समय उसी दो दिन के भीतर 430 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और 345 इस पे मामले दर्ज किए गए ये दो दिनों में। ये अभी भी जारी है और ये जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये हो गए तीसरी अभियान की बात, तीसरी थर्ड स्टेज में हुआ। इसके आगे भी था, एक 2023 में फरवरी में एक अभियान चलाया गया था, उस समय लगभग 3,500 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया और उस समय भी 4,000 से ज्यादा यहाँ पे मामले दर्ज हुए थे। जो उसी साल पिछले साल ही अक्टूबर के आसपास लगभग जो ये दूसरा मुहिम था उसमें लगभग 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उस समय भी लगभग 700 केस यहाँ पे दर्ज किए गए। एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं केस तो दर्ज हो गया उसके बाद क्या हुआ, इस मामले में खासकर इस बाल विवाह की रोकथाम के लिए मामले में इसमें जो पुलिस का कहना है कि लगभग 95% यहाँ पर कन्विक्शन रेट दर्ज किया गया था, मतलब 100 में से 95 लोगों को यहाँ पे दोषी माना गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे जारी है। ये रही तीसरी बात। अब जैसे मैंने बताई ये अभी भी है, जब हम लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसके खिलाफ अभियान यहाँ पे जारी है, साथ में एक जागरूकता अभियान भी जारी है। सिर्फ कानूनी कार्रवाई तो एक बहुत बुरा है ही, कानून का डर लोगों में है आ गया ये बहुत बड़ी बात, साथ में एक जागरूकता भी कि जो बाल विवाह क्यों रोकना चाहिए, ये भी एक यहाँ पे विभिन्न विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। कमल
जी, और इसमें कौन से जिलों पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि असम के कुछ खास जिलों में ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, तो उनका अगर आप हमारे साथ जिक्र करना चाहें।
जी ठीक है, इसमें जो ये पिछले दो, अगर मैं दो मुहिम की बात करूं तो असम में जो निचले असम है लोअर असम जिससे हम लोग यहाँ पे जानते हैं, मैं फिर भी बताना चाहूंगा अगर असम में हम लोग जैसे बात करेंगे ऐसे कि ऊपरी असम और निचले असम कहेंगे, ब्रह्मपुत्र के इस पर में ऊपरी असम जो जगह है और बाकी एक निचले असम, तो निचले असम से जो बांग्लादेश बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है वो धुबरी जिला है यहाँ पे, तो इस बार भी ये धुबरी जिला में भी ये इसमें ज्यादा मामले यहाँ पे भी सामने आए हैं और इस बार लगभग जो मैंने 21-22 तारीख की बात की अगर उसी के आंकड़े मान के चले तो 68 लोगों को धुबरी जिले में इस बार गिरफ्तार किया गया है और साथ में ही और कुछ ऐसे जिले हैं जैसे मोरीगांव जिला हो गया, फिर ग्वालपरा हो गया और कुछ कुछ क्षेत्र है जैसे चाय बागान की जगह हो गया वहां पर भी ये सब मामले ज्यादा है। तो कुल मिला के इन सब जगहों पर इस बार भी कार्रवाई जारी है, लेकिन ऐसा नहीं है ये पूरा पैन असम है, पूरा असम में जितने जिले हैं जितने जगह की। अब मैं बात करूं कि गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी में भी अगर मामले सामने आते हैं तो पुलिस वहां भी पहुंच जाती है या जो बल है काम कर रहे हैं इस पे, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि एक जगह को छोड़ जाएगा, पूरे असम में ही यहाँ पे नजर बना के रखे हुए है। कमल
जी, और अंत में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो ये राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है और उससे ये भी देखने में आ रहा है कि अगर बाल विवाह कम होता है तो जो माताओं की मृत्यु दर है और बच्चों की मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी, असम में भी इसके कुछ सकारात्मक नतीजे आए हैं, तो इस बारे में भी अगर आप कुछ जानकारी दे पाए।
जी बिल्कुल, ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो और जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो है हर साल इसमें कमी आ रही है, ये बहुत एक सकारात्मक दिश है और असम में भी यहाँ पे ये आगे की तुलना में इस पे कमियां हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें, जैसे मेरे सामने जो आंकड़े है कि 2020 और 21 के अगर हम बात करें एमएमआर में तो ये जो आंकड़े थे ये थे 984 मतलब 984, और इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लोग बात करें तो ये घट के हो गया है 324 में 372, मतलब आधे से भी ज्यादा इसमें कमी आई है, तो ये एक बहुत बड़ा बात है। एक ऐसे ही जो बच्चों की मृत्यु दर की बात करें तो इसमें 2020-21 के आंकड़ा अगर बात करें तो इसमें थे 9472 और इसमें हो गया है 4790, ये हो गया है 23 और 24 में। तो हम लोग ये आंकड़े बताते हैं कि ये इसमें बहुत सुधार आया है और इसको हम लोग बहुत ये मान सकते हैं, ये कानूनी कार्रवाई है, साथ में जैसे मैंने बताया जागरूकता अभियान है, हर तरह से एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच है जिसका शायद फायदा भी नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पे जो सरकार के कदम है जो बच्चों के लिए विशेष करके चाइल्ड के लिए स्कूली बच्चों के लिए उन लोग के बेहतर जीवन के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन लोग को योजना देना, पढ़ाई लिखाई करना, सरकार की तरफ से साइकिल देना, तो ये सब कई सारे मुद्दे हैं। कमल
बहुत धन्यवाद मानस इस विस्तृत जानकारी के लिए।
श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं, कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव भी लिख सकते हैं, हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।